ओम शांति, ओम शांति। तो आज आप फिर फ्रेश मूड से हम आज का सेशन अटेंड करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग आप लोगों के सामने हम स्टेज में इनवाइट करना चाहते हैं हमारे प्राता जी बीके पीयूष जी। तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि स्टेज में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके बाद हमारे बीच में बीके उर्मिला बहन जी भी है, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेज में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तो हम दो दिन से ज्ञान सरोवर एकेडमी में साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस आपको बहुत बहुत बेनिफिट हो रहा है और बहुत बहुत आप रिफ्रेश भी हो रहे हैं। नए नए आइडियाज, नई नई जो थॉट्स वगैरह आप लोगों को मिल रहा है, आइडियाज मिल रहा है, ये होप करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बहनों को रिक्वेस्ट करते हैं कि गुलदस्ते और बैज से स्वागत करें। बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और आप सभी को फिर से स्वागत करते हुए हम अब इस प्रोग्राम के डेप्थ में जाते हैं। तो हम पहले ये कहना चाहते हैं कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इन्फ्लुएंसिंग सेक्टर है और इसमें एक साधारण पर्सन घर की गृहिणी से लेके एक फार्मर, एक लेबर से लेकर म्यूजिक आर्ट एंड म्यूजिक सेक्टर से लेकर पॉलिटिकल और रिलीजियस सेक्टर्स तक भी इसका बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अलग होकर अपना जीवन आगे बढ़ाएं, कोई सोच नहीं सकते और कोई भी सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आज कोई कोई सेक्टर तो टोटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिपेंड हो गए हैं। नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिना आज कोई सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होगा और मेरा नाइट मेरा डे एंड होगा। तो हम इस टेक्नोलॉजी के टाइम पीरियड में, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट में हम अपने को अब बहुत रेस्पॉन्सिबल होकर आगे बढ़ना है। तो इसी सिलसिले में आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि ना जैसे हम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इन्फ्लुएंसिंग हो गया है और हम इस पार्ट में जुड़ रहे हुए हैं और यहाँ उपस्थित आप लोग भी किसी न किसी सेक्टर्स, चाहे है ना बिजनेस सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आप सब ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी, विशेष आत्माओं को हम अपने बीच यहाँ आप लोगों को पाना, यह हमारा बहुत बहुत भाग्य है कि हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर हरेक सेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरेक सेक्टर से जुड़े हुए हैं और हरेक सेक्टर से हम अपना अनुभव और अपना आइडियाज वगैरह शेयर करते हैं। तो अब हम ये साइंस डिपेंडेंट तो हो गए हैं, तो इससे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया है और हम अनुभव करते हैं कि हम जो हमारे पास आते हैं उनको सेटिस्फाइंग हिसाब से हमको अपना सर्विस देना पड़ता है। और हम देखते हैं, हम भी आर्किटेक्ट हैं और हम अनुभव करते हैं कि हमारा फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग, हमारे चारों तरफ देखते हैं कि जब हम अपना सेवाएं देते हैं तो हमारे अंदर एक प्रेशर आ जाता है ना, प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गया है और बहुत वैरायटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये सब चीज हमको टैकल करने के करते करते हम आज के प्रोफेशनल्स ये फील करते हैं कि बहुत आज है ना टेंशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत डेडलाइंस में सब चीज देना पड़ता है और ये सब बहुत प्रेशर में आते हैं। तो ये प्रेशर्स, ये सब चीजें जब ओवरकम करने के लिए हमने कई बार देखा है कि इसको कैसे ओवरकम, कैसे टेंशन को खत्म करें, तो हम देखा है कि कई लोग टोबैको, अल्कोहल इस चीज में को लेके अपने आप को हल्का करने की कोशिश करते हैं। पर अब हम कहना चाहते हैं कि ना जैसे हम ये इस चीज से ना, तो हम अपने आप को टेंशन, अपने आप को प्रेशर से हल्का तो करना चाहते हैं, पर इसका साइड इफेक्ट आ जाता है। तो हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। ऐसे जब खाना खाते हैं तो है ना नेसेसरी मिनरल विटामिन हम अंदर लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये हमारी बॉडी से नेचुरली करते हैं। ऐसे ही जो हम प्रेशर्स आज के वर्ल्ड में हमारे कान से जो सुनते हैं, हमारी आंखों से जो देखते हैं और हमारे लाइफ में जो अननेसेसरी बातें जो फेस करना पड़ता है वो कैसे निकालना है ना, तो वो चीज अगर नेचुरली हम निकाल पाएंगे तो हमारी लाइफ नॉर्मली चलता है। अगर वो नेचुरली नहीं निकलता है, जैसे हमारी सांस में नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, हमारी बॉडी से वेस्ट नेचुरली नहीं निकलेगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे ही हमारी जो प्रेशर है, हमारी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो प्रेशर वगैरह है ना, उसको नेचुरली हम जब नहीं निकालेंगे तो उसका ही रूप हमको स्ट्रेस, टेंशन क्रिएट हो जाता है और उससे ही फिर हमारे अंदर बहुत सारे अभी देखते हैं कि बहुत बीमारी वगैरह आ जाता है। तो यही चीज को नेचुरली निकालने का ही साइंस को ही कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में हम इसी को ज्ञान और योग, नॉलेज और मेडिटेशन के थ्रू इसको निकालते हैं। तो आज हम अभी इसी टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डिक्लटरिंग द स्पेस विथिन। तो हमारे अंदर जो हमारे मन बुद्धि में जो बाहर की बातें आते हैं, आते तो हैं हमारे कान द्वारा, हमारे आंखों द्वारा देखते हैं, अंदर तो घुस गए, पर अब कैसे निकालें, है ना। तो इसी टॉपिक में हमको आज डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक में आज हमारे बीच भ्राता पीयूष जी और उर्मिला बहन जी और साथ साथ हमारी ब्रीज मोहन भाई जी, उनका भी अपना अपना अनुभव और आइडिया आप लोगों के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रातः पीयूष जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना अनुभव आपके सामने शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रातः पीयूष जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। प्रातः पीयूष जी हमारा ब्रह्म कुमार है और उन्होंने न्यू दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हैं और एमबीए किए हैं और उन्होंने साथ साथ वो राजयोग योगी है और राजयोगी योगा मेडिटेशन का वो ट्रेनिंग कराते हैं, राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन है ना, तो थोड़ा उन दोनों ने राजयोगा ट्रेनिंग भी कराते हैं और उनको वो उन्होंने बहुत आर्टिकल में भी वो लिखते हैं, बहुत टॉपिक्स में लिखते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर है और साथ साथ उन्होंने बहुत ना हमारे राजयोगा ट्रेनिंग बहुत कंपनीज में और इंडस्ट्रीज में किया हुआ है, तो शॉर्टली हम भाई जी से उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
टाइम क्या हुआ 48। चलिए जल्दी से खड़े हो जाएं, आपको बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी है, इसलिए बी स्मार्ट। हम कब स्माइल करते हैं? भाई साहब अभी भी मोबाइल को लेके बैठे हुए हैं। कब स्माइल करते हैं भाई साहब? आपका नाम राजीव, कहां से आए हैं? गुजरात से आए। केम छो, मजामा छे, सारू छे। बताइए क्या सवाल पूछा मैंने, हम कब स्माइल करते हैं? नहीं, सब नहीं बोलेंगे, अनुशासन ये यूनिवर्सिटी है, जिससे पूछेंगे वही उत्तर देंगे। हाँ जी, सेकंड रो भाई साहब, आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए तो पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं, खुश होते हैं मुस्कुराना वो तो एक ही बात है। किसी ने पूछा मंदिर कहां है, कहते गुरुद्वारे के सामने, कहते गुरुद्वारा कहां है, कहते मंदिर के सामने, कहते दोनों कहां है, कहते आमने सामने। समझ में नहीं आया, हम कब मुस्कुराते हैं? मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में गया, वेरी सीनियर ऑफिसर स्माइल नहीं कर रहे थे। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा मुस्कराइए तो सही, कहते मेरी तनख्वाह बढ़वा दीजिए। तनख्वाह का मेरी स्माइल से कोई कनेक्शन नहीं है। हम कब स्माइल करते हैं? जब हमारी कोई प्रशंसा करता है। ठहरो ठहरो, जरा दोबारा बोलना क्या बोला। तो अब हम खुद ही अपनी प्रशंसा करेंगे, राइट? मैं बोलूंगा वाह भाई मैं, क्या बोलूंगा? आपको मेरे साथ क्या बोलना है? चलिए अपने हाथ ऐसे करिए, वाह भाई मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया, ये ज्ञान सरोवर वाली बात नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज वाली वाह वाह नहीं है, बहुत ठंडी ठंडी बातें बोल रहे हैं आप। ठीक है, चलिए दोबारा से करिए, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन। मिश्रा जी धीरे बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ी है। अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को राइज करना है तो आई हैव टू सेंड आउट पॉजिटिव एनर्जी। खराब है, मैं बुरा नहीं माने, मैं एनटीपीसी में गया तो कहते हैं कंपनी बहुत खराब है, ओएनजीसी वाले एंजॉय कर रहे हैं। और मैं ओएनजीसी में गया तो ये कहते हैं बहुत खराब कंपनी है, एनटीपीसी वाले मजे कर रहे हैं। लेट मी सेंड आउट पॉजिटिव वाइब्स टू माई ऑर्गेनाइजेशन, राइट? वाह भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन, वाह भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन, वाह भाई मेरे बॉस। भाई साहब की बॉस से बनती नहीं है, बोल नहीं रहे, देखिए बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो बॉस को भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, बॉस बहुत खराब है। तो मैं बॉस के पास बाद में गया, लेकिन मेरे जाने से पहले वो नेगेटिव एनर्जी बॉस के पास पहुंच गई, उन्होंने मुझे बिना वजह डांट दिया, राइट? तो ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या कहते हैं, बॉस को भी लेट मी सेंड आउट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे स्पाउस। ये चेक वाली शर्ट मैंने भाई साहब की बनती नहीं, लगता है स्पाउस से बोल नहीं रहे। सोचिए आप हालात कितने संगीन हैं। कहते हैं पत्नी और हेलमेट का एक जैसा स्वभाव है, ध्यान से सुने, पत्नी और हेलमेट का एक जैसा स्वभाव है, अगर सिर पे चढ़ा के रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तालियां बजाइए प्लीज। पहले घर में ही मंदिर होते थे, पत्नी पूजा कर रही थी, भगवान को कहा मेरी अर्जी सुनिए, आकाशवाणी हुई सुनाइए, कहते सातों जन्म मुझे यही पति मिले। पत्नी पति पीछे बैठे सुन रहे थे, कहते प्रभु मेरी भी अर्जी सुन लो, ये मेरा सातवां ही जन्म होना चाहिए। ओके, ये ताली बजाने की बात नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? लेट मी सेंड आउट पॉजिटिव एनर्जी टू माई स्पाउस। वाह भाई मेरे स्पाउस, बा भाई मेरे स्पाउस, बा भाई मेरा स्वास्थ्य, बा भाई मेरा स्वास्थ्य, बा भाई मेरा भाग्य, बा भाई मेरा भाग्य, बा भाई वाह, बा भाई वाह, बा भाई वाह। बहुत जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू। आपको ताली बजाना भी सिखा देता हूं, लगे हाथों ताली बजाना भी सीख लीजिए, ठीक है? अपने हाथ ऐसे करिए, बिल्कुल खोलिए, बिल्कुल अपनी उंगलियों को खोलिए, बिल्कुल खोलिए, और चेहरे पर मुस्कुराहट। आप ताली बजाएंगे, थैंक यू। बैठिए प्लीज। हमें अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखना है, इसलिए बार बार आपको खड़े होना है। आप माइंड तो नहीं करेंगे? आई नो यू आर वेरी बिग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपका टीचर बन गया हूं। तो आज का हमारा विषय है डी क्लटरिंग दी स्पेस विद इन। तीन शब्द हैं इसमें, एक डी क्लटर है, एक स्पेस है, एक विद इन है। तो डी क्लटर माने, क्लटर माने खराबी, गंदी चीजें, खराब चीजें, व्यर्थ की चीजें, अनुपयोगी चीजें, अननेसेसरी थिंग्स। तो हमें उनको क्या करना है? डी क्लटर करना है, माने बाहर निकालना है। इस हॉल की कैपेसिटी है 1600, अगर इसमें 2000 लोग बिठा दिए जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कंफ्यूजन एंड केओस, यस और नो? बहन जी आप कहां देख रही हैं? मैं आपको देख रहा हूं, आप कहां देख रही हैं? पीछे देखना मना है, राइट? मोबाइल से बात करना भी मना है, ओनली स्माइल कर सकते हैं आप, राइट? बिकॉज व्हेन यू स्माइल यू नीड नो मेकअप ऑन योर फेस। माय स्माइल इज माय बेस्ट मेकअप, राइट? कौन सा प्रसंग चल रहा था बहन जी? जरा परीक्षा ले लूं इनकी, देखिए। नहीं, ये तो प्रश्न नहीं था। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, पार्टली हेयर पार्टली एल्सवेयर। बच्चों से बार बार पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा ध्यान कहां है? अपने आप से आप पूछ सकते हैं, मेरा ध्यान कहां है? ओके? आप कुछ लोग मेरी बातों को कान से सुन रहे हैं और कुछ लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो मैं ध्यान से सुनना है, वरना मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। तो डी क्लटर माने 1600 की क्षमता है, 2000 लोग बैठे हैं तो क्या होगा? कंफ्यूजन एंड केओस। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? अंदर क्या हो रहा है? कंफ्यूजन एंड केओस। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, ऑलवेज खोए हुए हैं, किसी और दुनिया में हैं, क्योंकि यहां बहुत क्लटर है, बहुत गंदगी है, बहुत वेस्ट है। अगर यहां 400 कुर्सियां हैं तो उनको उठाना बाहर बहुत इजी है, लेकिन यहां बहुत मुश्किल है। इसी के लिए आपको यहां बुलाया गया है। मेडिटेशन इज द ओनली वे, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है? फिर वो क्लटर, जो गंदगी है, वो डीक्लटर होती है। बाल्टी में गंदा पानी भरा हुआ है, उसको मैं साफ कैसे करूं? आपने नल का चलाया तो थोड़ी देर में सारा गंदा पानी बाहर, बाल्टी में स्वच्छ पानी भर गया। तो आज से हमें क्या करना है? हाउ डू आई डी क्लटर माई स्पेस विद इन? मुझे क्या करना है? व्हाट डू आई डू? क्या करना है? कैसे निकालें बाहर? अच्छाई, अच्छी बातें, और स्पेस। अंदर भी स्पेस है, एक तो बाहर स्पेस है और एक स्पेस अंदर भी है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर है। हम बहुत बारी खाली बैठते हैं, और खाली बैठते हैं तो क्या होता है? फिर उसमें निगेटिव बातें आ जाती हैं। विद इन, अंदर। ये जिस्म है, ये रूह है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये शरीर है, ये आत्मा है। किसी ने क्या खूब फरमाया है, कहते हैं जिस्म और रूह का अजीब इत्तफाक देखा। जिस्म और रूह का अजीब इत्तफाक देखा, और जिंदगी भर साथ रहे फिर भी कभी रूबरू होते न देखा। प्रॉब्लम, सारी दुनिया से बात होती है लेकिन मेरी मेरे से मुलाकात नहीं होती है, इसलिए चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। लॉट ऑफ क्लटर्स इनसाइड। बहुत गंदगी अंदर भरी पड़ी है, सास की, बहू की, बॉस की, कर्मचारी की, अधिकारी की, समाज की, शहर की। आई हैव टू ब्रिंग इट आउट। क्योंकि जब तक वो गंदगी को डीक्लटर नहीं करेंगे तब वो गंदगी अंदर क्या करेगी, बीमारी, जर्म्स, कीटाणु, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आज बीमार हो गए हैं। एक नई बीमारी दिल्ली में आई है, मैं दिल्ली में रहता हूं, शायद यहां भी आ गई होगी, उसका नाम मैंने दिया है TAT, आपने नाम सुना, जल्दी से बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलेंगे, नहीं लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है मुझे, TAT माने टायर्ड ऑल द टाइम, टायर्ड ऑल द टाइम, सवेरे उठे टायर्ड, उठने का मन नहीं करता, ब्रेकफास्ट ले लिया फिर भी टायर्ड, लंच खा लिया स्टिल टायर्ड, शाम हुई फिर भी टायर्ड। कई लोग कहते हैं पीयूष भाई सब हम तो टायर्ड सोते हैं और सवेरे टायर्ड ही उठते हैं। सोचिए आप, हमारी दादी जानकी जी जो 2-3 साल पहले चले गए एट द एज ऑफ 104, उनकी प्रोफाइल मैंने पढ़ी, नीदर आई एम टायर्ड नॉर आई एम रिटायर्ड। ताली बजाएं दादी जी के लिए। सोचिए आप, मैंने विवेकानंद की जीवनी पढ़ी, मैंने अपने जीवन में 18 वर्ष के बुजुर्ग और 80 वर्ष के युवा देखे हैं। तो इन विच कैटेगरी यू आर इन, आप कौन सी कैटेगरी में समझते हैं अपने आप को? मुस्कुराते रहिए, गंभीर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, वरना मैं सवाल पूछ सकता हूं। हां जी बोलिए, आप बोलते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, डीक्लटर करना है, अंदर बहुत बातें भरी हुई हैं। मैं मुंबई गया, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल का, वहां मेन दरवाजे पर लिखा हुआ है या तो दिल खोल लो यारों के साथ वरना खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। ओके? तो अब हमें दिल में कोई बात रखनी नहीं है, ब्रिंग इट आउट, क्योंकि दिल क्या है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। किसी कवि ने कहा है इश्क बहुत नाजुक है, इश्क माने दैहिक प्यार नहीं, परमात्मा से प्यार, सच्चा प्यार, दिल का प्यार, भावनाओं का प्यार, इश्क बहुत नाजुक है, अक्ल का बोझ नहीं सह सकता है। तो जिसने भी अक्ल लगाई वो काम से गया। तो भगवान के साथ भी हमें प्यार करना है तो क्या अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है? दिल से भगवान को याद करिए। यहां सबके चेहरे चमक रहे हैं क्योंकि ये अक्ल नहीं लगाते हैं, ये भगवान पर समर्पित हो गए हैं। ओके? आपने आइंस्टाइन का नाम सुना भाई साहब, जो मेहरून रंग की शर्ट में बैठे? आप मुस्कुराते नहीं है, आपको मना किया हुआ है मुस्कुराने के लिए, तो मुस्कुराइए। व्हाट्स योर नेम? अतुल। बताइए अतुल भाई, मैंने क्या सवाल पूछा? आइंस्टाइन के बारे में बताइए। हां जी बोलिए अतुल भाई, बैठिए। कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है भाई साहब, आप बताइए। हु वाज आइंस्टाइन? बैठ के बोलिए, आप बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, बड़े हैं। हां जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। ही वाज ग्रेट साइंटिस्ट, यस और नो? हां जी। उनके जीवन की एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। वो बुजुर्ग हो गए, अपने घर में थे, एक बहुत बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट उनके पास आए, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा विच आई वॉन्ट टू रेफर हेयर। मिस्टर आइंस्टाइन, अगर भगवान आपको चॉइस दे तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? इफ गॉड गिव्स यू चॉइस, वट वुड यू लाइक टू बी इन योर नेक्स्ट बर्थ? आप सोच सकते हैं आइंस्टाइन ने क्या उत्तर दिया होगा? आइंस्टाइन ने कहा मैं अगले जन्म में संत बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी ए सेंट इन माई नेक्स्ट लाइफ, आई वॉन्ट टू बी एन ऑर्डिनरी मैन इन माई नेक्स्ट बर्थ। तो जर्नलिस्ट अपने आप को रोक नहीं पाए, कहते इतनी शोहरत मिली, इतनी दौलत मिली, इतनी सारी चीजों को इन्वेंट कर दिया, आप ये क्या कह रहे हैं? कहते मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मैंने दुनिया की सारी चीजों को इन्वेंट किया लेकिन मैं अपने आप को इन्वेंट करना भूल गया। तो डीक्लटर करना माने पहले मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, किसको डीक्लटर करूं, किसको करूं। दो चीजें हैं लाइफ माने, जैसे सिस्टम है ना हमारा कंप्यूटर है, इट हैज गॉट टू मेजर कंपोनेंट्स, वन इज हार्डवेयर, द अदर वन इज सॉफ्टवेयर। तो जब डीक्लटर की बात मैं कर रहा हूं, स्पेस विदिन की बात कर रहा हूं, माने आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर। समझो हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है भाई साहब, थोड़ा मुस्कराइए तो सही, आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, नहीं तो हो जाएगी। ताली बजा दे इनके लिए, हल्की बजा रहे हैं, आपके पास भी होने वाली है। व्हाट्स योर नेम? युवराज। ओहो, ये युवराज है। मुझे 40 वर्ष ज्ञान में चलते हो गए, मैं भी युवराज नहीं बना हूं। आई एम स्टिल डूइंग माई एफर्ट्स यू नो। ये जन्मजात युवराज है। कहां के रहने वाले हैं? अच्छा, छत्तीसगढ़ है, जो संभावनाओं का गढ़ भी है। वेरी गुड। क्या सवाल पूछा भाई साहब? सवाल भूल गए, दैट इज द प्रॉब्लम। जो हमें भूलना चाहिए वो हम याद करते रहते हैं, इसलिए यहां बहुत क्लटर हो गया है। और जो हमें याद करना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। इनके पास मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन आपका ड्राइवर अनाड़ी है। व्हाट विल हैपन? चिंता में आ गए हैं, कहते एक्सीडेंट होगा ना। तो यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है? खुबालकर जी, आप गंभीर नहीं होना बिल्कुल भी, आपका चेहरा मुस्कुराता अच्छा लगता है। यहां क्या हो रहा है? एक्सीडेंट्स। आई शाउट, आई क्राई, आई क्वेरल, आई फाइट, आई गेट इरिटेटेड, आई गेट टेंस, आई गेट इनसोम्निया, ऑल एक्सीडेंट्स। और एक्सीडेंट्स का कारण मेरे स्पाउस नहीं है, बॉस भी नहीं है, नेबर भी नहीं है, मैं ही कारण हूं और मैं ही निवारण हूं। व्हाट आई हैव टू डू? मुझे अपने आप को एम्पावर करना है। जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा थी वो कोविड में बच गए, जिनकी इम्यूनिटी कम थी चले गए। तो अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे डीक्लटर करना है अपने अंदर, तो मुझे अपने आप से बात करनी है। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत। तो हम यहां से क्या सीख के जाएंगे दोस्तों? मौन रखिए, यह सबसे बड़ी साधना है। द लेस यू टॉक द मोर यू आर लिसन टू। इफ यू वॉन्ट टू बी ए गुड स्पीकर यू हैव टू बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। इसलिए परमात्मा ने एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं। व्हाट इज द लर्निंग भाई साहब? आपका शुभ नाम, आप मुस्कुराते नहीं है, मना किया है मुस्कुराने के लिए। हाँ जी, आई एम आस्किंग यू, बैठिए, आप बड़े बुजुर्ग हैं, खड़े ना हो। व्हाट्स योर नेम? सुभाष जी, कहां से आए हैं? अच्छा, रोहतक से आए हैं। हरियाणा माने जहां हरी का आना और जहां दूध दही का खाना। ताली बजाए इनके लिए। क्या प्रश्न पूछा मैंने भाई साहब? भूल गए। नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए, कुछ तो बोलिए, तुक्का भी तीर लग जाता है। कहते उनसे नकल मार रहे हैं। नकल नहीं मार सकते, अकल से सुनाना पड़ेगा। बहन जी आप बताइए, जो बोले वही कुंडी खोले, आप बताइए। व्हाट इज द लर्निंग? हम करते क्या हैं? दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए यहां बहुत क्लटर हो गया है, बहुत बोलते रहते, बहुत इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? जिस बहन ने, जिस लड़की ने, लड़की हम लोग नहीं कहते यहां, बहन कहते हैं, सिविल सर्विसेज को इस बारी टॉप किया है, आप उसका गूगल में सर्च मारना आज। उसका नाम है इशिता किशोर। शी लिव्स इन ग्रेटर नोएडा। तो जब वो टॉप हुई तो उनको पूछा गया सीक्रेट क्या है, उन्होंने कहा नो ओवर इन्फॉर्मेशन। तो यहां क्या हो गया है? बहुत इन्फॉर्मेशन, 70,000 थॉट्स इन अ डे। सोचिए आप, दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ा तो फ्लाईओवर्स बना दिए, लेकिन यहां क्या बनाऊं? व्हाट डू आई डू? क्या करें? एंड आउट ऑफ 70,000 थॉट्स नियरली 95% थॉट्स आर वेस्ट, ऑर्डिनरी, नेगेटिव। इसलिए बहुत क्लटर हो गया है, बहुत गंदगी यहां पर है। इसलिए पेशानी पर बल पड़े रहते हैं, चिंता की लकीरें चेहरे पर नजर आती हैं। यहां किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि केवल वर्तमान में जीते। छोटा बच्चा भी चार सवार क्यों स्माइल करता है? बिकॉज अ चाइल्ड लिव्स ओनली इन द प्रेजेंट। और हम कहां रहते हैं? हम या तो भूत में रहते हैं इसलिए भूत ने पकड़ लिया है, और भविष्य में रहते हैं इसलिए चिंताओं ने पकड़ लिया है। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है मुस्कुराइए। जो भगवान का शुक्राना करते हैं वो मुस्कुराना करते हैं, भाई साहब जो देर से आए हैं आगे आइए प्लीज, आप रास्ता भूल गए थे, ताली बजाएं इनके लिए, रास्ता भूल गए थे, कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया, पहुंच तो गए फिर भी। हाँ जी, कौन सा सवाल चल रहा था, कौन सा सवाल चल रहा था, कौन सी बात चल रही थी भाई साहब, सेकंड रो। देखो भूल जाते हैं सारी बातों को, हमें क्या करना है, 95% थॉट्स आर वेस्ट, नेगेटिव, यूजलेस। कितना क्लटर यहां पर है आप सोचिए, कितनी गंदगी यहां पर है, इसलिए चेहरा हरदम भारी भारी रहता है, चेहरे पर चमक नहीं है, रौनक नहीं है। पता नहीं आपका सौभाग्य शायद हो, दादी जी से आप नीचे जाएं तो मिले, द हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, शी इज ओनली 99 ईयर्स ओल्ड। व्हाट्स हर एज? इस सभा में कोई 99 के हैं? आप उनके चेहरे का ग्लो देखिए, आप उनके चेहरे की लालिमा देखिए, आप उनके चेहरे का नूर देखिए, आप उनके चेहरे का आभा मंडल देखिए, आप देखते रह जाएंगे कहां से आ रहा है वो ग्लो। दोस्तों वो ग्लो फेयर एंड लवली वाला नहीं है, वो ग्लो अंदर से आ रहा है, यहां बिल्कुल डीक्लटर है। प्लेन बुद्धि ही प्लानिंग बुद्धि हो सकती है, तो हमें अपनी बुद्धि को क्या बनाना है, प्लेन बनाना है। या कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, बट हाउ डू आई डू इट? तो आगे बताया गया, कम सोचो, धीरे सोचो, मीठा सोचो। सोचने से पहले सोचो कि आखिर मुझे सोचना क्या है। तो जब हम डीक्लटर की बात करते हैं तो सबसे पहला क्लटरिंग हमें क्या करनी है, डीक्लटरिंग, ये डिजिटल। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, चैनल बदलते रहते हैं, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा कम करिए उसको, थोड़ा कम करिए। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है डीक्लटर करने के लिए, हमें सवेरे जल्दी उठना है। मैंने 40 वर्ष लगभग मुझे हुए यहां, तो मैंने यहां एक स्लोगन पक्का कर लिया, रात को 10 माने बस, सवेरे 4 माने तैयार, राइट? तो हम भी क्या करेंगे, जल्दी सो जाइए और सवेरे जल्दी उठिए। और जल्दी उठ के क्या करें, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई साहब जल्दी उठिए, कहते जल्दी उठ के करूं क्या मैं, तो जल्दी उठ के क्या करना है, क्या करना है, अपने आप से बात करिए, सेल्फ डायलॉग। सेल्फ डायलॉग कैसे करेंगे बताइए, शैली आपका नाम है, हां जी बताइए, मुस्कुराते रहिए, राजयोग करेंगे, वाह लेसन पक्का हो गया, ताली बजा दीजिए। चलिए फिर से खड़े हो जाएं, फिर से खड़े हो जाएं एक बारी, अब हम सेल्फ डायलॉग करते हैं। हाथ अपना ऐसे करें, बिल्कुल सीधा कर लें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, सबकी फोटोग्राफी हो रही है, किसी चेहरे पर गंभीरता नहीं होनी चाहिए, रमणीकता होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा करें और ऐसे मोड़ें और पीछे लेके जाएं और बोलें शाबाश। नहीं, मजा नहीं आया बिल्कुल भी, सीधे हाथ करिए, अब एक साथ बोलना है, वी आर वन फैमिली ना, वन वर्ल्ड वन फैमिली, बिल्कुल सीधा करिए और हथेली को मोड़ें और पीछे लेके जाएं, शाबाश शाबाश, मेरे साथ बोलना है, हाँ बिल्कुल सीधा करिए, ऐसे करिए फिर पीछे लेके जाइए, शाबाश शाबाश, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम यूनिक, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ताली बजाएं और बैठ जाएं, ये प्लीज, ये सेल्फ डायलॉग हो गया। दुनिया वालों से बात नहीं करनी है, अपने आप से बात करनी है, ठीक है? घर में और मंदिर में कोई अंतर है? बहन जी आपका नाम, हाँ जी, आप मुस्कुराते नहीं है, क्या हुआ? आपका नाम अमिता, कहां से आई हैं? अच्छा दिल्ली से आई हैं, हाँ जी बोलिए। कहती है क्या बोलूं, देखिए किससे पूछूं मैं, बहन जी आप बताइए मंदिर और घर में कोई अंतर है? कहती आउट ऑफ सिलेबस ना पूछा करिए। देखिए घर में और मंदिर में एक बहुत बड़ा अंतर है, घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो डीक्लटर माने अपने घर की एनर्जी को हाई एनर्जी बनाना है, क्योंकि दो ही तरह की एनर्जी है, ईदर दिस इज लो एनर्जी माने फीलिंग लो माने बिग फेलियर, और हाई एनर्जी माने सक्सेसफुल। कोई बच्चा फेल हो गया, डॉक्टर कलाम के पास गया, कहते फेल हो गया हूं, कहते बैठो
FAIL माने फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, पॉजिटिव थिंकिंग। ताली बजा दें प्लीज। सोचिए सोचिए, कहते जिंदगी में कहते हैं हार तो कभी होती नहीं है, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। ओके, तो हम अपने घर की एनर्जी को कौन सी एनर्जी बनाएंगे? हाई एनर्जी, दैट्स ऑल। फिर कोई क्लटर यहां नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव को खत्म करने का पुरुषार्थ नहीं है, पॉजिटिव को बढ़ाने का पुरुषार्थ है। राइट, अंधकार को भगाने का पुरुषार्थ नहीं है, प्रकाश को लाने का पुरुषार्थ है। तो हमें क्या करना है? व्हाट आई हैव टू डू? अपने घर को बनाना है मंदिर, अपने ऑफिस को बनाना है हाई एनर्जी। राइट, अपने आप को शाबाशी दीजिए। राइट, और दूसरी बात बोली, आई एम ओके, मैं ठीक हूं। बीमार कब हुए? पार्टी में गए, क्लब में गए, किसी ने कह दिया, मिस्टर शाह योर फेस हैज बिकम पेल, बीमार पड़ गए। क्योंकि सामने से नेगेटिव एनर्जी आई, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आई हैव टू एनकाउंटर दैट एनर्जी, आई एम ओके। क्या बोलना है? मैं ठीक हूं। एक बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, दोनों सिनेमा देखने चले गए। सिनेमा चल रहा था, पत्नी को सीने में दर्द हुआ। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, सुनिए, कहा सुनाइए। कहते मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई दवाई है? कहते है ना, ये गोली जीभ के नीचे रख लो। रख ली। 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, डॉक्टर साहब ने पूछा, हाउ आर यू? दैट लेडी स्माइल्ड, शी सेड आई एम ओके। डॉक्टर साहब ने भी स्माइल किया। कहते मेरे कोट का बटन जो जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। सोचिए, एवरीथिंग हियर डीक्लटर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चाहे घर कैसा भी हो, महंगा सोफा नहीं चाहिए, लेकिन क्लीन सोफा चाहिए, क्लीन माइंड चाहिए, क्लियर बुद्धि चाहिए। और हम किसमें लगे हैं? सोफा सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, लेकिन मेरा माइंड ऑलवेज अपसेट है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे? ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाएं क्या है? सवेरे उठ के व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अपने साथ बात कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे, हाई एनर्जी क्रिएट कर लेंगे, और फिर आई एम ओके, मैं बीमार हुई नहीं, आई एम यूनिक, मैं विशेष हूं। आप विशेष हैं? हां जी या ना जी भाई साहब? हैं? बोल नहीं रहे हैं। कहते मैं कहा हूं विशेष, मोदी जी विशेष हैं। नहीं, मोदी जी भी विशेष हैं और आप भी विशेष हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक। 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं आज दुनिया में, लेकिन कोई भी दो डीएनए जैसे नहीं है, कोई भी दो उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है। सो आई एम नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन अभिमान भी नहीं है मैं सबसे अच्छा हूं। नहीं, सीखना सबसे है, लेकिन कॉपी नहीं करना। नो ईगो, इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। एक और एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी से खड़े हो जाएं। हमें अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखना है ना, इसे बहुत बारी खड़े होना है, बैठना है, और अपने पार्टनर बनाएं, आमने सामने खड़े हो जाएं। हां जी, अगर भाई भाइयों को बनाएंगे, बहने बहनों को बनाएगी तो अच्छा रहेगा। जल्दी करिए। हां जी, सभी के पार्टनर्स बन गए, वेरी गुड। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कराइए। क्या हुआ, मुस्कुराते नहीं है आप? क्या हुआ है? अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए, मुस्कराइए, गुनगुनाइए, चहचहाइए। भाई साहब मुझे क्यों देख रहे हैं आप? ये मुझे देख रहे हैं, देखिए मुझे नहीं देखना, अपने पार्टनर को देखना है। हाँ जी हाँ जी, मुस्कराइए, चहचहाइए, गुनगुनाइए। अच्छा चलिए, अपने पार्टनर से बहुत गर्म जोशी से गले मिलिए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, दोनों में से कोई एक पार्टनर अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर लेंगे, कोई एक, कोई एक, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। राइट, पार्टनर नंबर टू एक हाथ से पूरी ताकत लगा के, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है। शुरू हो जाइए प्लीज। मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। चलिए दोनों हाथ लगाइए। चलिए बैठ जाइए, एक्सरसाइज इज ओवर। बोलिए, व्हाट इज द लर्निंग? शाह भाई, आप बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने सामने से देखा, व्हाट इज द लर्निंग? बोलिए। महुआ जी, आप भी बहुत जोर आजमाइश कर रही थी, मैं देख रहा था सामने से, व्हाट इज द लर्निंग? बहन जी, आपने भी बहुत जोर आजमाइश की, मैंने सामने से फोटोग्राफी में देखा, व्हाट इज द लर्निंग? मैंने पार्टनर नंबर वन को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी, उनका ईगो बढ़ गया, आई एम समथिंग। मैंने पार्टनर नंबर टू को बोल दिया, कुछ भी हो जाए मुट्ठी, खोल के दिखानी है, उनका भी अहंकार बढ़ गया, आई एम समथिंग। सो दिस वॉज द क्लैश बिटवीन टू ईगोज एंड रिजल्ट वॉज जीरो। यस और नो? यस और नो? काश आपने अपने पार्टनर को कहा होता, आई वॉन्ट टू शेक हैंड विद यू। भाई साहब, आप भी बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने देखा सामने से। सोचिए, आप सोचिए। तो लर्निंग क्या है दोस्तों? झुकिए। अगर विजयी बनना है तो विनम्र बनना पड़ेगा, विजयी बनना है तो झुकना पड़ेगा। झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो आज से हमें क्या करना है? आज से हमें क्या करना है? मोदी जी ने, मैं पूरा करने वाला हूं अपनी बात, परीक्षा पे चर्चा में बच्चों से बातचीत की, और मोदी जी ने वहां रिसर्च वर्क शेयर किया, भारत में औसत भारतीय 6 घंटे मोबाइल पर रहता है। रिसर्च वर्क, सोचिए कितना क्लटर अंदर है। वो इंफॉर्मेशन जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर अंदर क्या करेगी वो इंफॉर्मेशन? बम्बार्टमेंट। और मोदी जी ने यह भी बताया कि जब हमारे पास केवल कॉल करने वाले मोबाइल थे तो हम 20 मिनट मोबाइल पर रहा करते थे। तो हमें गैजेट्स की फास्टिंग करनी है एक दिन, पॉसिबल? भाई साहब, आपका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया है, कौन से दिन करेंगे फास्टिंग? चिंता में आ गए। देखिए, एक आदमी ने थोड़े अच्छे कर्म किए, थोड़े बुरे कर्म किए, कहते तुम्हें स्वर्ग में भी जाना है, नरक में भी जाना है, पहले कहां जाओगे? सोच के बोला, कहते मोबाइल दे दो, चार्जर दे दो, कहीं भी भेज दो। सोचिए आप, सोचिए आप, मोबाइल मेरी जिंदगी नहीं है, मैं मोबाइल को यूज कर रहा हूं या मोबाइल मुझे यूज कर रहा है? भाई साहब, मोबाइल इनको यूज कर रहा है। सोचिए आप, अगर गाड़ी पर से ड्राइवर का कंट्रोल छूट जाए तो क्या होता है, और मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? इसलिए मुझे मोबाइल को यूज करना है, लेकिन मोबाइल को मिसयूज नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत अंदर इंफॉर्मेशन चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसलिए क्वालिटी इंफॉर्मेशन, नॉट क्वांटिटी इंफॉर्मेशन। ओके, तीन बातें अंत में बताता हूं, आप क्या करेंगे यहां से। हम अपने घर को और ऑफिस को बनाएंगे टेंशन फ्री जोन। कैसे भाई साहब? सेकंड रो, जो मोबाइल लेकर बैठे, मोबाइल बंद करिए, वरना आपको यहां आना पड़ सकता है। व्हाट्स योर नेम? बैठिए भले। सुधीर, ओके, कहां से आए हैं आप? ओ, मुंबई से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का संदेशा लाए हैं, ताली बजाइए इनके लिए। वेरी गुड। चांगला आहे, मैं मुंबई गया तो सब लोग कहते चांगला आहे, मैंने कहा ये क्या है? कहते सब ठीक ठाक है, और मुंबई गया तो उन्होंने श्रीखंड खिलाया, आप श्रीखंड लाए हैं मेरे लिए? अच्छा, मना कर रहे हैं, कहते अगली बार ही लाऊंगा, थैंक यू वेरी मच। तो हमें क्या करना है दोस्तों? अपने घर को, ऑफिस को क्या बनाना है? टेंशन फ्री कैसे बनाएंगे? हमें हो गई है तनाव से मोहब्बत, और हमें तनाव होता है तनाव न होने के कारण, प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे? हमारी दादी जी ने हमें बताया, जो भी नहीं रहे, का टेंशन में कुछ नहीं करना है, ए प्रीफिक्स कर दो, ए जोड़ दो, तो ये बन गया अटेंशन। सावधानी हटी, लेकिन दुर्घटना कब घटी? क्लटरिंग कब हुई? व्हेन आई वाज नॉट अवेयर। हमारे ईमेल में एक सिस्टम लगा हुआ है, जो भी जंक मेल होते हैं उनको फिल्टर आउट कर देता है। तो क्या यहां भी कोई मैं फिल्टर लगा सकता हूं? मेडिटेशन इज ए फिल्टर, अवेयरनेस इज ए फिल्टर, राइट? जागृति इज ए फिल्टर। तो अपना घर को और ऑफिस को क्या बना दिया मैंने? टेंशन फ्री जोन। और अपने घर को और ऑफिस को बनाना है एंगर फ्री जोन। पिछले एक महीने में जिन्होंने क्रोध नहीं किया, जरा हाथ उठाएं। हां, संभल के उठाना, मैं पत्नी से फोन करके पूछूंगा। ऐसे थोड़ा ना मान लूंगा। हाँ जी उठाइए उठाइए उठाइए, देखो सारे हाथ उठाए बहन जी, फिर नीचे कर लिए, देखिए डर रहे हैं। ओके, एंगर के बारे में मेडिकल साइंस ने कहा है कि अगर आपने एक बार गुस्सा कर लिया, नेक्स्ट 72 आवर्स योर बॉडी सेल्स कीप बर्निंग, यू आर हार्मिंग योर सेल्फ। एंगर बिगिंस इन फॉली एंड्स इन रिपिटेंस। और एंगर में अगर मैंने पहले डी लगा दिया तो भाई सब सेकंड रो, प्रीफिक्स डी इन टू एंगर डेंजर, तो जब भी क्रोध आएगा तो ये सीन इमर्ज करना। मैंने माउंट आबू जाकर के ये प्रतिज्ञा की है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। गुस्से में दिमाग की नसें फट सकती हैं, गुस्से में दिल का दौरा भी पड़ सकता है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। यूक्रेन में क्या हो रहा है आज? व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन? एक व्यक्ति का क्रोध, यस और नो? तो हमें अपने घर को और ऑफिस को क्या बनाना है? क्योंकि जब क्रोध आता है तो बहुत क्लटर इकट्ठा हो जाता है। यहां डी क्लटर करिए, गुस्सा करना ही नहीं है, शांति। गुस्से से गुस्से को ठीक नहीं किया जा सकता है। और तीसरा, अपने घर को और ऑफिस को बनाएंगे स्माइलिंग जोन। अभी तो स्माइल करिए, रविशंकर जी आपको क्या हुआ? यू नॉट स्माइलिंग, थोड़ा स्माइल करिए। छोटा बच्चा 400 बार स्माइल करता है क्योंकि वो वर्तमान में जीता है, और हम स्माइल नहीं करते, 17 बार स्माइल करते हैं क्योंकि या तो हम भूतकाल में रहते हैं या तो हम भविष्य में रहते हैं। तो अब हमें कहां रहना है? वर्तमान में जीना है, मुस्कुराना है। कहते हैं मस्ती जिंदा तो हस्ती जिंदा, मस्ती जिंदा तो हस्ती जिंदा, वरना तो जबरदस्ती जिंदा। तो मुझे क्या करना है? बस स्माइल करते रहना है। कहते हैं जो होशियार व्यक्ति होते हैं वो अपने चेहरे पर दो चीजें रखते हैं, एक खुशी और एक खामोशी। दो चीजें रखते हैं अपने चेहरे पर, खुशी और खामोशी। खुशी, खुशी मसलों को हल करने के लिए, खुशी मसलों को हल करने के लिए, और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। दैट्स ऑल, और तो कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो यहां से क्या सीख के जाएंगे, क्या करेंगे? ज्यादा नहीं सोचना, गैजेट की फास्टिंग करना, सवेरे जल्दी उठना, और जल्दी उठ के सेल्फ डायलॉग करना। पहला थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थॉट ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको डायरी में नोट कर लेना, वो आपके सारे दिन को डिसाइड करेगा हाउ योर डे इज गोइंग टू बी। लास्ट थॉट ऑफ द डे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो आपकी स्लीप की क्वालिटी को डिसाइड करेगा। आज दिल्ली NCR में तो बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया हो गया है, नींद नहीं आती है। अव्वल तो नींद आती नहीं, आती है तो ख्वाब सताते हैं। ओके, फ्रेश नहीं है, अंदर बहुत कचरा भरा पड़ा है। तो अब मुझे क्या करना है? थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वालिटी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर चर्निंग करिए, विचार करिए, अपने आप से बात करिए, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और अंतिम बात, मुस्कुराना नहीं भूलिए। कहते हैं एक स्माइल से अगर हमारी फोटो अच्छी आ सकती है, एक स्माइल से हमारी फोटो अच्छी आ सकती है, तो अगर हम सदैव मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी? हां जी या ना जी? अब तो मुस्कुराइए प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच भाई साहब। तो भाई साहब ने हमको बहुत रिफ्रेश भी किया, बहुत मोटिवेट भी किया, और बहुत सिंपल तरीका से कैसे हम अपने आप को हल्का बना सकते हैं, डीक्लटर कर सकते हैं, वेस्ट थॉट्स से निकाल सकते हैं, और अपने आप को अपने आप में अटेंशन देके कैसे अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं, और अपने घर और ऑफिस को कैसे एक स्माइलिंग जोन और एक एनर्जेटिक एरिया बना सकते हैं, इसकी टेक्निक्स वगैरह हमको बताया, तो भाई जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सिंपल रीति से इतना वास्ट टॉपिक को आपने शॉर्ट टाइम पीरियड में आपने कवर किया। अब इसके बाद हम उर्मिला बहन जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपना अनुभव शेयर करें। तो हम शॉर्टली बहन जी का इंट्रोडक्शन देते हैं कि बहन जी सांदीवन से आए हैं, बहन जी 40 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और बहन जी ज्ञानमित डेली मैगजीन से उनका एडिटर है और उनका उसमें बहन जी का हमेशा एक आर्टिकल हमेशा रहता है। और साथ साथ बहन जी राजयोगा मेडिटेशन और ब्रह्म कुमारी का स्पिरिचुअल एजुकेशन सबको सिखाते हैं, सिंप्लीफाइड वे से सिखाते हैं और देश विदेश में भी सबको मोटिवेशन करते हैं। तो आज आप लोग के सामने भी बहन जी आपको बहुत बहुत आइडियाज वगैरह और अपना एक्सपीरियंस से आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, मंच पर विराजमान भ्राता पीयूष जी, मेरी अति स्नेही ग्रीष्मा बहन, सभा में विराजमान आप सभी प्रभु प्रेमी भाइयों बहनों, आज के विषय पे बहुत सारी बातें हमने पीयूष भाई जी से सुनी। अब हम थोड़ा सा मुड़ते हैं उस रूट कॉज की ओर, जिसके कारण हमारे मन के अंदर इतना क्लेटर इकट्ठा होता है, उसकी जड़ें कहाँ हैं। आप एक छोटे से बच्चे को प्ले स्कूल में भेजते हो, जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो वहां पे एक बहुत बड़ी पिक्चर लगी रहती है जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो बच्चे को हम वहां खेल खेल में सिखाते हैं, यहां से हेड, उसके बाद फोर हेड, उसके बाद आईज, ईयर, नोज, लिप, चिन, ऐसी करके एरो के साथ सारे ऑर्गन्स लिखे रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने सारे ऑर्गन्स की चर्चा की लेकिन बीच में क्या मिस हो गया? क्या मिस हो गया? आप अपने बच्चों को जरूर छोड़ने जाते होंगे और उस पिक्चर की तरफ ध्यान देते होंगे। हम सीधा फोर हेड से फिसल करके आईज पे आ गए, बीच में क्या मिस हुआ? फोर हेड और आईज के बीच में कुछ है? सोल। सोल की कितनी शक्तियां हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। तो आज हम चर्चा कर रही हैं कि हमारे भीतर अर्थात मन में भी, बुद्धि में भी और संस्कारों में भी जो अननेसेसरी बातें भर गई हैं, उनको हम कैसे साफ करें। तो जब बच्चे को ये बताया ही नहीं जाता कि कोई आत्मा नाम की भी चीज है, उसमें कोई मन नाम की भी शक्ति है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, तो ये तो मिस हो गया। मन को बच्चे ने जाना ही नहीं। अच्छा, स्कूल में मिस हो गया। अब बच्चा सुबह सुबह जब उठता है तो उसकी मम्मा क्या कहती है? ला बेटा, तेरा मुंह धो दूं, आंखें धो दूं, कंघी कर दूं, बढ़िया शर्ट पहना दूं। कभी मम्मा ने कहा कि ला तेरा मन धो दूं? स्कूल में भी मिस हो गया, मैडम ने मन की तरफ ध्यान नहीं दिया। घर में भी मिस हो गया, मम्मा ने कभी मन को धोया नहीं, मन को चमकाया नहीं। मन के ऊपर कितनी गर्द जमी है, धूल जमी है, उसकी तरफ मम्मा ने ध्यान नहीं दिया। अगर बच्चा घर से बाहर निकलता और बाल उलझे हुए हैं, तो माँ कहती है बेटा उलझे हुए बाल लेके घर से बाहर नहीं जाते, बालों को सीधा करो। लेकिन मन में कितनी उलझने हैं। मम्मा ने कभी नहीं कहा कि उलझा हुआ मन लेके घर से बाहर नहीं जाते, और उलझा का उलझा रह गया। मम्मा बाजार से बच्चे के लिए कितने नए कपड़े, कितनी जींस लेके आती है, एक एक जींस में 15-15 जेबें होती हैं। लेकिन कभी मन के लिए कोई नए विचार लेके आई? शरीर को सजाया, लेकिन मन को सजाया क्या? तो मन इग्नोर होता गया। मन की ब्यूटी, मन की चमक, उसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। शरीर की आयु बढ़ती रही, और जब जवानी आती है तो नेचुरल सब में सुंदरता आ जाती है। कुरूप व्यक्ति भी कुछ दिनों के लिए सुंदर लगता है। अब हम कहते हैं देखो हमारा बच्चा जवान हो गया, कितना सुंदर हो गया, तो अब क्या करो, अब इसको जिम्मेवारी दे दो। लेकिन क्या बच्चा अपनी जिम्मेवारी संभाल पा रहा है? क्या उसका मन इतना स्ट्रोंग है? वो जब आंख खोलना चाहता है तो आंख खुलती नहीं है, और जब बंद करना चाहता है तो बंद नहीं होती। जिस बात में बोलना चाहिए वहां होठ अपने आप चिपक जाते हैं, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां होठ खुल जाते हैं। जहां जाना चाहिए उधर कदम बढ़ते नहीं है, और जिधर नहीं जाना चाहिए वहां पर हम चल पड़ते हैं। तो जो अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहा, अपनी ऑर्गन्स को नहीं संभाल पा रहा, उस बच्चे को हम एक परिवार संभालने की जिम्मेवारी दे देते। ये तो वही बात हो गई कि घोड़ा कमजोर है और पीछे गाड़ी में वजन आपने बहुत सारा डाल दिया। माँ भी बैठ गई, बाप भी बैठ गया, पत्नी भी बैठ गई, अब एकाध बच्चा भी बैठ जाएगा, और घोड़े का क्या हाल है? वो कभी तो गाड़ी छोड़ के ही भाग जाता है, या कभी पांव ऊपर कर देता है, गाड़ी में बैठे सारे फिसल जाते हैं। और फिर हम कहते हैं देखो हमारे घर में बड़ा टेंशन है, क्या करें बहन जी, बच्चा कहना नहीं मानता, या तो गाड़ी को छोड़ के लाल पीला पानी पीने चला जाता है। वो सोचता है लाल पानी पीऊंगा तो मेरे में ताकत आ जाएगी। ताकत तो मन को क्लटर करने से आनी थी, वो विधि तो सीखी ने। हम लाल पानी पिए कि पीला पानी पिए तो मन के अंदर जो गंदगी है, नेगेटिविटी है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, हम और ज्यादा कमजोर हो जाते। तो क्या करें? अगर हम बाल्यकाल से ही तन और मन दोनों को साथ लेकर के चले, बाल्यकाल से ही तन के साथ साथ मन की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप कपड़े दिन में एक बार जरूर धोते हो, लेकिन कपड़े तो साल भर दो साल भर चलते हैं, और घर में झाड़ू आप दिन में दो बार लगाते हो, घर में भी आपको कितने साल रहना है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन मन की सफाई आप कितनी बार करते हो? जो मन अनंत काल तक आपके साथ रहेगा, जन्म से पहले आपके साथ था और देह छूटने के बाद भी ये मन आपके साथ जाने वाला है, तो जो इतनी इम्पोर्टेंट एंटिटी है उसको हमने कभी अंदर झांक के देखा ही नहीं। और इसलिए कई बार तो हमें एकांत से भय लगता है। अभी बात हो रही थी कि एक व्यक्ति 6 घंटे मोबाइल पे व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे उसे दूसरे, तीसरे, चौथे लोग दिखते हैं। अगर वो 6 घंटे अपने साथ व्यतीत करे तो उसे वो पीरियड डरावना लगता है, एकांत डरावना लगता है। एकांत में बैठना भय पैदा करता है, मन नहीं लगता, बोर हो जाते हैं, भागने को मन करता है, कोई दोस्त ढूंढते हैं। जबकि व्यक्ति दुनिया की ऊंची से ऊंची अचीवमेंट एकांत में अपने साथ बात करके ही प्राप्त करता है। जितने साइंटिस्ट एकांत से साइंटिस्ट बने, जितने भी सेंट एकांत में बैठ के सेंट बने, जिसने भी संसार को कुछ अच्छा दिया, अपने भीतर उतर करके दिया। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, बढ़िया से बढ़िया चीजें, भाई हम तो उनका उपभोग करेंगे, तो वो अपनी जिंदगी को चीजों का उपभोग करने में खपा देते हैं। लेकिन वास्तव में जो उपभोग करते हैं, कहते हैं भोग व्यक्ति का शोषण करता है और त्याग व्यक्ति का पोषण करता है। दूसरे लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया में जो इतनी चीजें हैं, हवाई जहाज है, कंप्यूटर है, ट्रेन है, ये आई कहां से? किसी ना किसी के भीतर से ही तो निकली है। तो अगर हमारे पूर्वजों के भीतर से निकल सकती है तो क्या मेरे भीतर कुछ नहीं है? मैं भी तो अपने भीतर को खंगालू, मैं भी अंदर से कुछ निकाल करके दुनिया को दे करके जाऊंगा। तो कुछ लोग दुनिया में जो कुछ है उसमें ऐड करना चाहते हैं और कुछ लोग दुनिया में जो कुछ है उसका भोग करना चाहते हैं। कौन सी कैटेगरी को ऊंचा मानेंगे? जो ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना पड़े? अपने भीतर जाना पड़े और भीतर जो किताब है उसके पन्ने पलटने पड़े, किस पन्ने पर क्या नया लिखा हुआ है। बाहर जो किताबें हैं वो भी भीतर से ही निकली। हमारा भीतर बहुत समृद्ध है, बहुत रिच है, बशर्ते कि हम उन खदानों को, अंदर की खदानों को खोदना सीख लें। और जब हम भीतर नहीं उतरते हैं तो बाहर की रब्बिश भीतर जाती रहती है। मुझे याद है कुछ साल पहले, क्योंकि मैं मैगजीन की सेवा में हूं, तो किसी ने मुझे एक पत्र लिखा कि आपका एडिटोरियल था पास्ट को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तो मैं अपने पास्ट से बहुत परेशान हूं, आप कुछ और पॉइंट्स लिख के भेजिए, मेरी 10% समस्या हल हुई। तो मैंने कुछ बातें उसको लिख करके भेजी। फिर मुझे पत्र आया कि मैं 20% रिलैक्स हुआ, लेकिन मुझे कुछ और बातें लिख के भेजिए। मैंने लिख के भेजी, फिर पत्र आया 30% रिलैक्स हो गया और लिखिए। मैंने कहा भाई साहब आप समस्या ही बता दीजिए ना, शायद मैं उसकी जड़ में पहुंच सकूं। तो उसने बताया कि मैं एक स्कूल में टीचर था और मैं बहुत ही उत्साहित था कि मैं इतनी अच्छे से बच्चों को पढ़ाई कराऊंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा और धीरे धीरे मैं प्रिंसिपल की पोस्ट तक और उसके बाद एजुकेशन डायरेक्टर तक पहुंच जाऊंगा। और सचमुच वो बहुत मेहनती था। लेकिन एक दिन जब वो सुबह की क्लास में आया तो बच्चे क्लास में शोर कर रहे थे, उसको शोर अच्छा नहीं लगा। अच्छा किसी को भी नहीं लगता, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। और आपको पता है जब गाड़ी पे नियंत्रण ना रहे या अपनी जीवा पे नियंत्रण ना रहे तो दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसने शोर मचाते हुए बच्चों को गुस्से में कह दिया कि क्यों क्लासरूम को बुचड़खाना बना रखा है। एक दुर्घटना घटी और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकला, सारे बच्चों ने यूनिटी करके एक रेजोल्यूशन पास किया कि आज से इस टीचर का नाम है बुचड़। कहते हैं ना, जो बोते हैं वही उगता है, जो देते हैं वही मिलता है। तो अंदर जो कुछ भरा हुआ था क्रोध के कारण बाहर निकला और बच्चों तक गया और बच्चों ने वो वापस टीचर की तरफ भेज दिया। अब स्कूल में 1000 बच्चे और मिनट में सारे बच्चों तक समाचार पहुंच गया कि ये बुचड़। बुचड़ का एक मतलब होता है मूर्ख और एक मतलब होता है कसाई। तो उस टीचर ने परेशान होकर स्कूल छोड़ दिया, वो दूसरे स्कूल में गया। समाचार वहां भी पहुंच गया कि हमारा बुचड़ तुम्हारे स्कूल में आ गया। उसने वो शहर छोड़ दिया, किसी दूसरे शहर में गया, वहां तक समाचार पहुंचते भी देर नहीं लगी। उसके बाद उसने हरियाणा छोड़ दिया, वो राजस्थान में आया और यहाँ एक रावत भाटा शहर है जहां गवर्नमेंट का एक परमाणु संयंत्र है, वहां उसने हिंदी अनुवाद का काम शुरू किया। उसके बाद वो माउंट आबू घूमने आया, हमारी मैगजीन का मेंबर बना और मैगजीन का एडिटोरियल पढ़ा, तो उसने मुझे पत्र लिखा और इस तरह से उसकी और मेरी जान पहचान हुई। उसके बाद मैं कोटा गई तो भी मैंने उसको बुलाया कि आप मेडिटेशन सेशन अटेंड कीजिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब देखिए, ये समस्या उसी समय खत्म हो सकती थी, अगले दिन प्रेयर में अगर वो बच्चों को कह देता कि मेरे बच्चे बुचड़ नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरे मुख से गलत शब्द निकल गया, मैं उसके लिए बच्चों से माफी मांगता हूं, वो बात वहीं की वहीं रुक जाती। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा शोला बन गई और उसको इस बात का दुख था कि मुझे कहां एजुकेशन डायरेक्टर तक पहुंचना था लेकिन मेरा तो स्कूल ही छूट गया। तो हमारे भीतर लगभग 80% बातें पास्ट की पड़ी रहती हैं जो अंदर ही अंदर हमें टीज करती हैं, चुभती रहती हैं, हमारा समय खराब करवाती है। हम कोई बात याद करना चाहते हैं, नई बात अंदर लेना चाहते हैं तो वो लिख देती है नो स्पेस, स्क्रीन पे आ जाता है। भीतर हम जमे बैठे हैं, कोई आके तो दिखाए और वो जमी हुई 20 साल पुरानी 15 साल पुरानी बातें नई बातों को जगह नहीं लेने देती। फिर हमारी शिकायत होती है कि बहन जी हम पढ़ते तो बहुत हैं कुछ याद नहीं रहता, सुनते तो बहुत हैं कुछ याद नहीं रहता, अंदर स्पेस ही नहीं। स्पेस कैसे मेंटेन होगा? रात गई और बात गई। जैसे हम बासी रोटी नहीं खाते तो फिर बासी बातों का जमावड़ा यहां क्यों? पुराने जमाने की पुराने फैशन की चीजें घर में नहीं रखते। पहले जमाने में लोग घाघरा पहनते थे, आज कोई महिला घाघरा नहीं पहनती। पुराने जमाने में भाई लोग धोती पहनते थे, आज कोई भाई धोती नहीं पहनता। तो हमने जब पुराने जमाने की चीजें छोड़ दी तो पुरानी बातें क्यों नहीं छोड़ देते? पुराने जमाने में लोगों के घरों में मिट्टी के बर्तन होते थे, आज सबके घरों में कांच, प्लास्टिक, स्टील या चांदी है। तो जब हम उन बर्तनों में खाना नहीं खाते तो पुरानी बातें सहेज के क्यों रखी हुई है? पुरानी बातें सहेज के कहाँ रखी जाती? या तो किसी म्यूजियम में रखी जाती या फिर कोई गोदाम हो। लेकिन ये मन ना तो म्यूजियम है और ना ही गोदाम है, ये तो हर रोज एक बहती हुई नदी की तरह से, नदी का पानी आगे चला जाता और कुछ फ्रंट में रहता है वो भी आगे चला जाता। तो विचार आते हैं, आगे चले जाते हैं, विचारों से हम अपना काम करते हैं और फिर वो विचार रील में लिपट जाते हैं। हम लिपटे हुए विचारों को पुनः खोलते हैं, निकालते हैं और इतनी देर में हमारा जो प्रेजेंट है, जो रियल में हमारे लिए एक सौगात है, वो हमारे हाथों से निकल जाता है और हम पास्ट में रहते रहते प्रेजेंट के सारी सौगातें लेना भूल जाते हैं। तो इसलिए पास्ट को पास्ट कीजिए। मुझे याद है एक बहन हमारी दादी जी से मिलने आई थी, दादी जानकी जी से, तो दादी जी कुछ अस्वस्थ थी। तो उस बहन ने कहा ठीक है मैं कल मिल लूंगी। अगले दिन वो मिलने आई, दादी जी स्वस्थ हो गई थी। तो उसने कहा दादी जी अब ठीक हैं? दादी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। दादी जी आप कल तो बीमार थे। तो दादी ने कहा वो तो कल की बात थी ना, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल की बात हम आज क्यों याद कर रहे हैं? तो प्रेजेंट में रहें और जो बातें काम की नहीं है उनको हम डिलीट कर दें। इसलिए मेडिटेशन में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, हर बात पूरी होने के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगा देते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप फुल स्टॉप ना लगाएं तो सेंटेंस से सेंटेंस मिल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ खत्म हुआ कहाँ शुरू हुआ। पूर्ण विराम ना लगाएं तो आपको जो मजमून लिखा हुआ है या जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो पढ़ने में ही नहीं आएगा। कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ कोमा, यही तो भाषा की सुंदरता है। तो जीवन की भी सुंदरता इसी में है कि बात बीत जाने के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमारी किचन में एक चाकू है और चाकू के लिए एक नियम है कि चाकू से आप कोई भी चीज काटते हैं तो उसके बाद आप चाकू की धुलाई कर दीजिए। बहनें बैठी हुई हैं, अपने बच्चों को सिखाती हैं ये बात, हमें बचपन में सिखाया गया था। एक इतनी जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। और इस चाकू की धुलाई में जीवन का एक लेसन है। मान लीजिए आपने चाकू से मिर्च काटी और चाकू को धुलाई नहीं किया, अगला व्यक्ति किचन में आया, चाकू उठा के उसने चाकू से सेब काटा और जब सेब खाने लगा तो मुंह कैसा बनाया? जैसे मिर्च खा रहा हो। ऐसा क्यों हुआ? एक छोटा सा रूल, चाकू से कोई भी चीज काटने के बाद उसे धो दीजिए, नहीं तो उसका असर अगली चीज पे और अगली चीज पे जाएगा। ये रूल हमारे जीवन पे भी लागू होता है। मान लीजिए सुबह एक व्यक्ति आपसे मिलने आया, बहुत अग्रेसिव था, बहुत नेगेटिव था, उसने आपको आपकी ऑफिस के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके परिवार के बारे में या आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में 8-10 नेगेटिव बातें सुनाई, आपके ऊपर कई ब्लेम लगाए, आपके कई अवगुण सुनाए, आपने अपनी सफाई पेश की लेकिन वो व्यक्ति कन्विंस नहीं हुआ और आपको कुछ इस प्रकार की बातें सुना करके और वो चला गया और आपके अंदर उन बातों का अभी चिंतन चल रहा है, इसने मुझे ये बोला, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, इसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसा बोला, पर ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी है ही नहीं, आपको चिंतन चल रहा है। इसी बीच एक दूसरा व्यक्ति आया और वो व्यक्ति आपके लिए एक तोहफा लेके आया, आपकी बहुत प्रेज करने आया, उसको आपसे कुछ प्राप्तियां हुई हैं, उनको मेंशन करने आया, लेकिन यहां चाकू पे तो मिर्च लगी हुई है। तो जैसे ही वो व्यक्ति आया तो पहला जो मिर्च वाला प्रभाव है ना, वो तुरंत उसके ऊपर हम उलेंड देते, मैं कितना बिजी हूं पता नहीं है, तुम लोग चले आते हो, पूछते भी नहीं हो, टाइम भी नहीं लेते हो। और वो कहता है मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो तोहफा लेके आया हूं, मैं तो प्रेज करने आया, मैं तो कृतज्ञता व्यक्त करने आया, लेकिन हमारे वाले चाकू पे तो मिर्च लगी हुई है। अब पहले वाला तो नाराज था ही और चूंकि हमने चाकू धोया नहीं, इसको भी नाराज कर दिया। और इस तरह से हम एक बात का प्रभाव लेकर के दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम मित्रों के साथ मित्रता वाला व्यवहार नहीं कर पाते, अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ भी कई बार पुराने अनुभव के आधार पे गलत व्यवहार कर लेते हैं और बाद में हम पछताते हैं, अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए? मेडिटेशन सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ ऐसा वैसा व्यवहार कर गया तो आप तुरंत उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। उसने तो आपको बात एक बार कही और आपने अपने आप को कितनी बार कही, कितनी बार कही, वो एक गुना दोषी और हम जितनी बार कही उतना गुना दोषी। और वैसे कोई हमें कोई बात सुनाए तो हम कहते हैं भाई एक ही बात को आप बार बार क्यों सुना रहे हो, मैं बोर हो गया सुनते सुनते, लेकिन मेरा मन एक ही बात को 10 बार 20 बार 50 बार रिपीट करता है, तब हम अपने मन को नहीं कहते कि तुम वही बात क्यों रिपीट कर रहे हो, मैं बोर हो गया, कुछ नई बात लेके आ। घर में अगर रोज बैंगन की सब्जी बने तो हम कहते हैं बैंगन खा खा के थक गए और मन में 1-10 दिन से बात पड़ी है, उसको हम रोज रिपीट कर रहे हैं, तब मन को नहीं कहते कि इस बात को सुनते सुनते हम थक गए, कुछ नया सुनाओ। बाहर नवीनता चाहिए, भीतर भी तो नवीनता होनी चाहिए ना। नए कपड़े चाहिए, नई कार चाहिए, नए मकान चाहिए, नए नए दोस्त चाहिए, नई नई जगह देखने को चाहिए और भीतर के विचार वही 10 साल पुराने बासी। नवीनता भीतर से आती है। किसी ने एक बार मेरे से पूछा था कि आप रोज सफेद कपड़े पहनते हो, आप बोर नहीं होते हो? बोरियत कपड़ों से दूर नहीं होती, बोरियत नए नए विचारों से दूर होती है। हर सुबह का सूर्य एक नया विचार लेकर के आता है, हर रोज नए विचार के साथ उठिए, नए विचार के साथ लोगों से व्यवहार कीजिए। कल वाले विचार खत्म हो गए, चले गए, लेट गो कर दीजिए। और जब आप नए विचारों के साथ उठेंगे तो आप संसार में सब कुछ नया ही दिखेगा। लेकिन जब विचार नए नहीं होते तो हम बाहर नवीनता ढूंढते, लेकिन ये भौतिक जगत हमें कितनी नई चीजें देगा? इतनी जेब किसकी भरी हुई है कि रोज नई ड्रेस पहन लो, रोज नई जगह घूम लो, रोज नई गाड़ी ले लो, फिर बोरियत, फिर बोरियत। तो विचारों को अच्छा कैसे बनाएंगे? इसके लिए चाहिए मेडिटेशन, इसके लिए चाहिए ज्ञान योग की क्लास, इसलिए ब्रह्मा कुमारी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, उनमें हर रोज सुबह सुबह मुरली सुनाई जाती है। सभी भाई बहन एक घंटे की क्लास में जाते हैं, उस एक घंटे की क्लास में इतने नए विचार होते हैं, इतने नए आइडियाज होते हैं, उनको हम सुन करके आते हैं और उनसे अपने मन को भर लेते हैं, तो सारा दिन आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। कोई बात आती भी है तो वो बात, कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं, तो जहाँ परमात्मा की लाइट माइट है वहाँ छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही चली जाती। तो आप भी यहाँ से ये मंत्र लेकर के जाइए कि हम जहाँ से भी आए हैं उस शहर में रोज सुबह अच्छी बातें अपने भीतर डालेंगे तो जो पुरानी बातें वो भीतर से अपने आप ही निकल जाएंगी। मुझे याद है मैं जब 16 साल की उम्र में पहली बार ब्रह्मा कुमारीज में गई थी तो एक महिला थी लगभग 60 साल की, उसने मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा बेटा एक छोटा सा मंत्र देती हूँ। मैंने कहा माता जी इस मंत्र से क्या होगा? बोला आपके भीतर सफाई होती रहेगी, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, कहीं भी जाती हो, इस मंत्र को हमेशा याद रखना। तो मैंने पूछा मंत्र क्या है? छोटा सा मंत्र, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपने मन में इसको रिपीट करती रहना। मैंने उस बात को अपने भीतर इतना रिपीट किया, इतना पक्का किया कि मेरे चारों ओर कुछ भी अगर मुझे नेगेटिव दिखा तो वो मेरे अंदर गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। और ये मंत्र आज भी मैं अपने मन को बार बार रिपीट करवाती हूँ, जब भी एकांत हो, जब भी खाली हूं, मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो जब मैं हुई शुद्ध तो मेरे भीतर अशुद्धि कैसे जाएगी? तो आप भी इस मंत्र को अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि खाली मन को अगर हम कुछ देंगे नहीं अच्छे विचार तो खाली मन क्या होता है? बड़ी पुरानी कहावत है, हम सब जानते हैं, अच्छा नहीं देंगे तो बुरा आएगा ही, मकान में व्यक्ति नहीं रहेगा तो जाले तो लगेंगे ही, चींटियां तो आएंगी, छिपकली तो घूमेंगी, कीड़े मकोड़े तो आएंगे। इसलिए या तो मकान आबाद रहे तो हमारा मन भी ऊंचे विचारों से, महान विचारों से आबाद रहे। सुबह उठते ही 3 गोलियां खाएं, हमारी दादी जानकी कहती थी उठते ही 3 गोली खाओ, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, शांति, धीरज और प्रे। जैसे ही आंख खुले पहला संकल्प करो कि आज मैं सारा दिन शांति से व्यतीत करूंगा, अगर कोई मुझे क्रोध से बोलेगा तो भी मैं उससे शांति से ही बात करूंगा, अगर मेरी कोई नुकसान हो गया, कोई चीज बिगड़ गई तो भी मैं शांत रहूंगा। शांति का पाठ सुबह उठते ही दोहराइए, शांति का ओरा मेरे चारों ओर है, मैं शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा की शांति की किरणें मुझ पे आ रही हैं, मेरा शांति का स्टॉक फुल है, मैं अपनी शांति को नहीं छोड़ूंगा, शांति मेरी अमूल्य दौलत है, शांति मेरी अमूल्य पूंजी है। कुछ भी हो जाए, जैसे मैं अपने धन की हिफाजत करता हूँ ऐसे मैं अपनी शांति की हिफाजत करूंगा। ये पहली गोली। दूसरी गोली है प्रे। मैं आज सबसे आत्मिक प्रेम से व्यवहार करूंगा, आत्मिक प्रेम, आत्मा से प्रेम करूंगा। अगर कोई मेरा शत्रु भी होगा, कोई मेरा शुभ चिंतक नहीं भी होगा तो भी मैं अपनी प्रेम की किरणों से उसका हृदय बदल दूंगा। मैं प्रेम से बोलूंगा, प्रेम से देखूंगा, प्रेम से व्यवहार करूंगा। मैं प्रेम के सागर, परमात्मा की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं अपना प्रेम नहीं छोड़ूंगा। प्रेम मेरी अमूल्य दौलत है, मैं आत्मा हूं ही प्रेम स्वरूप। ये हमने दूसरी गोली खाई। और तीसरी गोली धैर्य। कुछ भी हो जाए मैं धैर्य को बनाए रखूंगा। अधीरता कहते हैं जो धीरज नहीं रखता उसे धक्का खाना पड़ता है। फिर कहते हैं कि कोई कितनी भी जल्दी करे काम तो अपने समय पे ही होगा। एक देसी कहावत है कि गीदड़ कितनी भी जल्दी करे बेर तो अपने समय पे ही पकेगा। लेकिन धीरज का मतलब आलस्य नहीं है। कई लोग आलसी होते हैं, काम को शुरू ही नहीं करते, और कई लोग काम शुरू करके इतनी जल्दबाजी करते हैं कि जितना टाइम लगना चाहिए उससे भी पहले उसे पूरा देखना चाहते हैं। दोनों ही बातें एक्सट्रीम हो जाती हैं। दोनों के बीच में है धैर्य। काम शुरू भी कीजिए और जितना समय उसमें लगना है साक्षी होके उसे लगने दीजिए। मैं धैर्यवान आत्मा हूं, मुझे अपना धैर्य नहीं छोड़ना। धैर्यवान ही वास्तव में बहादुर है, शक्तिशाली है। जो अपना धैर्य छोड़ देता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आप देखेंगे सुबह सुबह 3 गोलियां खाएंगे तो दिन भर आप फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे, परिस्थितियां आएंगी और आपको नमस्कार करके वापस चली जाएंगी। और आप अपने लक्ष्य को बहुत सहजता से अचीव कर पाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला बहन जी को कि उर्मिला जी बहन जी ने भी एक गहराई में ले जाके कैसे अपने आप को डिक्लटर करना है, कैसे वेस्ट चीज को निकालना है, ये हमको समझाया। बहन जी ने जो कहा ये बहुत सच है कि आज हम दुनिया के हिसाब से सब चीज अचीव करने के लिए कैपेबल हो गए। पैसे आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, गाड़ी आ जाते हैं, हम क्वालिफाइड हो गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, क्या क्या बन गए, बड़े पोस्ट मिल गया है, पर हमको हम अपने आप में आप ही खो गए हैं और अपने आप के लिए ही टाइम नहीं है। तो आज के स्पीकर ने यही कहा कि पहले अपने आप से ही बात करो तो वहीं से ही सॉल्यूशन होगा। इसलिए टाइम निकालना है कि एक एकांत में अपने आप को साइलेंस में रख के अपने आप से जब बात करेंगे तो फिर सब सॉल्यूशन अपने आप में ही आ जाएगा। और मेन बात यही कहा कि अपने आप से पॉजिटिव बात करनी है ना, और नेगेटिव बात को फुल स्टॉप लगाना है और पास्ट को खत्म करना है। तो इससे हम सब चीज हल्का बन जाएंगे। तो इसके बाद अब हम यहाँ भ्राता ब्रीज मोहन जी का कुछ स्पीच आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। भ्राता ब्रीज मोहन जी हमारे ब्रह्म कुमारी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है। वो पिछले 1960s से ब्रह्म कुमारीज में है और वो उनका उम्र अभी 90s हो गया है, पर फिर भी वो इतना एक्टिव है। और अभी इस टाइम में वो लंदन में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमने ये प्रोग्राम का इनविटेशन दिया पर कहा कि ये प्रोग्राम में आना तो बहुत इंटरेस्ट है पर मेरा वहाँ का प्रोग्राम बन गया, इसलिए मैं अपना स्पीच रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज देता हूँ कहा है। तो हम भाई जी का वही रिकॉर्ड स्पीच सुनेंगे और भाई जी का भी जो एक्सपीरियंस है कैसे हमको अपने जीवन में खुश रहना है और कैसे एनर्जी हमको है ना, जैसे हम दुनिया में कहते कि हम 60-70 होने के बाद अब हम रिटायर हो गए बोल रहे हैं, पर भाई जी आज 90s के एज में भी इतना एक्टिव है। तो लॉन्ग टर्म तक हमको कैसे एक्टिव रहना है, कैसे अपने आप को एनर्जाइज करना है और सबके बीच में इस दुनिया में रहकर हमको कैसे हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये भाई साहब हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और हम स्क्रीन में भाई साहब का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये हमको आप दिखा रहे हैं।
शांति, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है डीक्लटरिंग द स्पेस विद इन। हम सब जानते हैं कि रिफाइंड फ्यूल से व्यक्ति दूर तक जा सकता है और अगर ईंधन में मिलावट हो तो कोई भी किसी प्रकार का भी वाहन है वो अपनी क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकता। जहां तक मानव का सवाल है तो मानव मन के वाहन पर ही यात्रा करता है। मन उसको ऐसी प्राकृतिक शक्ति मिली हुई है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। मन की स्पीड सिर्फ एक संकल्प है। आप जहां जिस चीज का संकल्प करेंगे वहां पहुंच जाएंगे। अब अगर मन के अंदर मैल है या दूसरे शब्दों में मिलावट है तो फिर जहां आपने पहुंचना है वहां पहुंचने की बजाय आप कहीं और भी पहुंच सकते हैं, और वरना जहां पहुंचना चाहे उसके रास्ते में ही मन के संकल्प भंवर की तरह घूमते रहते हैं। हमको हमने ये देखना है कि मन में मिलावट क्या होती है। तो एक होता है शुद्ध हृदय, शुद्ध मन, आंतरिक शुद्धि इसी को कहते हैं कि हम अपने मन से हर प्रकार की व्यर्थ वस्तु और ऐसी वस्तु जो हानिकारक है उसको निकाल दें। हमारे अंदर आंतरिक जगत में तीन शक्तियां होती हैं, एक है ज्ञान, दूसरी है गुण और तीसरी है शक्तियां। तो ज्ञान भी हमारे अंदर कौन सा होना चाहिए, आज ज्ञान के नाम पर हम जानते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ हुआ है, कई चीजें जो हमारे हमें जानने की आवश्यकता नहीं बहुत सारी हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, जिसके कारण से आवश्यक ज्ञान छिप जाता है। इसलिए ज्ञान की परिभाषा में कहा गया है नॉलेज। लेकिन नॉलेज भी जो होता है अच्छे और बुरे दोनों का होता है। अगर व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों का नॉलेज है फिर भी वो अच्छा कर ना सके बुरा छोड़ ना सके तो नॉलेज किस फायदे का। इसलिए आंतरिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए कहा भी जाता है लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जान। तो यथार्थ ज्ञान या थोड़ा ज्ञान हानिकारक है। तो वास्तव में एक शब्द आता है विजडम। तो सरस्वती जी को गॉडेस ऑफ विजडम कहा गया है, और वो विजडम सरस्वती जी ब्रह्मा की बेटी हैं, उनको परमात्मा शिव से स्वयं परमात्मा से प्राप्त होती है। उसमें अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा ही अच्छा होता है। इसी प्रकार से जो गुण है हम सब जानते हैं कि सर्व गुण संपन्न होना ही आंतरिक जगत की श्रेष्ठता है। लेकिन अगर हमारे सर्व गुण नहीं है या गुणों के साथ अवगुणों का मिक्सचर है तो भी आंतरिक जगत में सफाई और श्रेष्ठता नहीं है। और शक्तियां हैं, अब दिव्य शक्तियां होती हैं जिसमें हम कहते हैं प्रेम है, सुख है, सहयोग है, शांति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, पवित्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अगर उन आंतरिक सात्विक शक्तियों की बजाय हम क्रोध को शक्ति मान लें, अहंकार को शक्ति मान लें, या लोभ धन आदि पदार्थ आदि पोजीशन की शक्ति मान लें तो वो फिर नेगेटिव शक्तियां हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान गुण और शक्तियां सात्विक हों, सही हों, यथार्थ हों, यही हमें अपने मन की सफाई के लिए चाहिए। विषय तो बहुत लंबा है लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में हमने जो कुछ धारणा की है उसके आधार पर हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहला प्रिंसिपल ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं रहती, नथिंग एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। जैसे पेड़ फल देता है तो पेड़ फल को खाता नहीं है, नदी में जल होता है तो नदी जल पीती नहीं है, सूर्य की गर्मी और रोशनी सूर्य के लिए नहीं होती दूसरों के लिए होती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक चीज दूसरों के लिए है, ये पहला प्रिंसिपल बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके मालिक नहीं बन सकते। एक बहुत बड़ा धोखा है कि मेरे पास किसी चीज का रिकॉर्ड का रजिस्ट्रेशन है कि तुम इसके मालिक हो, मैं इसका मालिक, कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपना मकान किराए पर दे दें, किराएदार उसको यूज कर रहा है और वो किराया देना बंद कर दे, आपको कोर्ट में एक सीट ले, तो आप पछताएंगे कि मैंने ये मकान बनाया ही क्यों। केवल आपको उपयोग का अधिकार है, किराएदार उसको यूज कर रहा है। तीसरा ये है कि वही चीज हमें सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है। आपका बच्चा आपका नाम रोशन भी कर सकता है और आपका नाम मिट्टी में भी उड़ा सकता है। आपका धन दौलत आपके प्राण को भी खतरे में डाल सकता है और आपकी शान और शौकत भी बढ़ा सकता है, सुख भी दे सकता है। अब फिर एक और असूल है कि सिर्फ संसारिक चीजों का एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस। फिर प्रश्न उठता है हैप्पीनेस कैसे आएगी। इसके लिए कहा जाता है कि हैप्पीनेस अच्छे कर्मों से आती है। अब अच्छे कर्म हमें किसको कहेंगे, तो इसमें कहा जाता है कि जैसे शुरू में हमने कहा हर चीज दूसरों के लिए भी नहीं है, तो हमें भी टू गिव अप्रोच रखना चाहिए जीवन में कि मुझे देना है, हमेशा देने का अप्रोच रखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा, स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। तो देवता हमारे पूर्वज इसीलिए सुखी थे कि टू गिव अप्रोच रखते थे। जब हर चीज दुनिया की दे रही है तो हमें भी उसके कॉन्सोनेंस में देने वाला बनना चाहिए। अब बात यह है कि हम क्या दें, क्या कंबल बांटना, पैसा बांटना, इसी को देना कहते हैं? नहीं, बहुत एक सूक्ष्म बात है। केवल हम अगर अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं तो हमें एक तो यह है कि कोई भी अशुद्ध वस्तु हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, हमें शुद्ध देना चाहिए। इसलिए एक फॉर्मूला ब्रह्मा कुमारीज में है कि अगर हम सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं, कोई कैसा भी है सबका मन में शुभ चिंतन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शुभ होगा तो हम शुभ ही देंगे। हमारे पूर्वजों ने कहा है जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, तुझको फूल के फूल है वाको है तरसूल। दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन अगर मैं अपनी अप्रोच रखता हूँ देने की और सबके लिए शुभ सोचता हूँ, शुभ भावना शुभ कामना रखता हूँ, तो अवश्य ही मेरा मन शुद्धि की ओर अग्रसर होगा और एक दिन पूर्णता मेरा मन पावन बन जाएगा और मुझे पावनता के आधार पर सुख शांति समृद्धि सर्व चीज की प्राप्ति होगी। ओम शांति।
हम ब्रिजमोहन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ हमारे बीच प्रेजेंट ना होकर भी इतना अच्छी तरह से हम लोगों को अपना आइडिया शेयर किया है कि कैसे हम अपने मन को हल्का करें। तो भाई साहब ने कहा कि देने का सोचो, और हर चीज में पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट होता ही है, तो हमको उसका पॉजिटिव चीज लेना है तो हमारा मन हल्का होता रहेगा, हमारा बुद्धि हल्का होता रहेगा। तो आज हमको बहुत बहुत हमारे तीन स्पीकर ने बहुत बहुत हमको मोटिवेट किया, बहुत आइडियाज दिया कि कैसे हम अपने आप को डीक्लटर करें, वेस्ट चीज अननेसेसरी चीज को अपने आप से निकालें। और सबने कहा कि अपने मन को जानो और अपने मन को शांत करना सीखो और मेडिटेशन टेक्निक सीखो, ये कहा है ना। तो इसीलिए आज के वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज इज द मस्ट, पर एक्सरसाइज फॉर द फिजिकल, हम फिजिकल एक्सरसाइज हम सीख चुके हैं जानते हैं, पर ये मेडिटेशन है जो हमारे मन को एक्सरसाइज करने वाला। तो जब हम मन की को आज की वर्ल्ड में बहुत सारी बातें आ जाते हैं हमारी मन बुद्धि में, तो हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो फिर हमारी मन बुद्धि को कैसे हल्का रखना है, कैसे हमको इसको एनर्जी भरना है, कैसे इसमें इसको और पावरफुल बनाना है, है ना, एम्पावर करना है, ये हम टेक्निक हम मेडिटेशन के थ्रू हम खुद ही जान सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं। तो फिर हम किसी में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम शॉर्टली एक छोटा सा मेडिटेशन का प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे। तो ये मेडिटेशन जो है ये एक टेक्निक है, ये साइंस है ना, ये कोई कुछ मंत्र वगैरह नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन में सबसे पहले यूज होता है हमारा थिंकिंग प्रोसेस ना, जो हम सोचते हैं उसी से ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है। तो मेडिटेशन में हम थिंकिंग प्रोसेस है, इसको हम पॉजिटिव थिंकिंग में लेके जाते हैं। तो फर्स्ट तो और ये एक एक फैक्ट है कि जो हम सोचते हैं ना उसकी एनर्जी हमारे पास आ जाते हैं। हम अच्छी की बात सोचते हैं तो अच्छी एनर्जी हमारे पास आते हैं, और बुरी बात को सोचते हैं तो बुरी एनर्जी हमारे पास आ जाते हैं। तो थोड़ी देर हम कुछ बुरी बात सोचते हैं तो फिर हमको ना अंदर ही अंदर वो फील हो जाता है, खराब फील होना शुरू होता है। तो मेडिटेशन में सबसे पहले है ना, तो जो भी वेस्ट चीजें, जो भी खराब चीजें हम लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव हो रहा है, वो दिमाग में चल रहा है, उसको थोड़ा निकाल के अच्छी बातें अपने आप से करना शुरू करते हैं। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है, उसी में एक फोकस होना, सेकेंड में फोकस होना, पहले थिंकिंग शुरू करना पॉजिटिव बातें, सेकेंड में फोकस होना, और थर्ड स्टेप में विजुअलाइजेशन करना। तो विजुअलाइजेशन में, विजुअलाइजेशन थ्रू हम उसको फिर एक्सपीरियंस करते हैं और उससे हम एनर्जी लेते हैं। अब विजुअलाइजेशन क्या है ना, थोड़ा एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल एग्जांपल। जैसे हम आपको कहेंगे कि एक ग्लास ठंडा पानी आपके सामने है और आप उसको पी रहे हैं, है ना। तो ये आप विजुअलाइज करेंगे तो आपके अंदर अभी अभी जैसे शीतल ठंडा होना शुरू होता है। आपने पानी नहीं पिया, बस आपको एक है ना एक विजुअलाइजेशन दिया कि एक ठंडा पानी का ग्लास आपके सामने है। तो ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस है कि हमारे अंदर ये सिस्टम है कि जो हम सोचते हैं उसको जब विजुअलाइज करेंगे तो उसकी एनर्जी हमारे पास है। तो मेडिटेशन में भी हम ऐसे ही पॉजिटिव, यहाँ हम पॉजिटिव एनर्जी को विजुअलाइज करके फिर उससे एनर्जी लेते हैं। तो यहाँ हम आज के मेडिटेशन में हम तीन एनर्जीज को विजुअलाइज करके उससे एनर्जी लेने की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस तो हमको है ना, जैसे ये राजयोगा मेडिटेशन में हम आंख खोल के ही मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ये करने की अभ्यास करना होता है। पर आप इसको आंख बंद करके भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको यहाँ हम तीन एनर्जी में हमको फोकस करके विजुअलाइज करने को करते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी हम हमारे अंदर ही हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसमें फोकस करते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं। और सेकेंड में हम कॉस्मिक एनर्जी को हम फोकस करते हैं और विजुअलाइज करते हैं। और थर्ड में हम सुप्रीम एनर्जी को फिर विजुअलाइज करते हैं, फोकस करके विजुअलाइज करके उससे एनर्जी लेते हैं। तो ये एक हम जर्नी में जाते हैं है ना, जैसे ये टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड एक जर्नी में जाते हैं इस मेडिटेशन में। तो आप शॉर्टली इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाइए तो फिर आपको एक्सपीरियंस होगा। तो सब लोग बहुत रिलैक्सली अटेंशनली बैठिए और सब चीज से निकाल के है ना, बहुत आपने आपको अटेंशन दे दीजिए और आंख बंद करके भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब बात को छोड़ के अब हम एक लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं। तो पहले हम लंबा सांस लेते हैं और धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे सांस निकालते जाएंगे और अपने अंदर फोकस करते जाएंगे। हम धीरे धीरे सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम इस भृगुटी के बीच में, दोनों आंखों के बीच में फोकस कर रहे हैं। इस बीच में मैं आत्मा एक एनर्जी, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और इस बॉडी से डिटैच होके इस बॉडी को जला रही हूँ। इस भृगुटी के बीच में मैं अपने आप को एक लाइट एनर्जी का अनुभव कर रही हूँ। यहाँ से एक लाइट निकल रहा है और मुझे इस लाइट में बहुत साइलेंस और पीस का अनुभव कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इस एक्सपीरियंस में हल्का और एनर्जी फील कर रहा हूँ। मेरे सब प्रेशर टेंशन हल्का होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से एक साइलेंस और लाइट की एनर्जी आ रहे हैं और धीरे धीरे मेरे बॉडी से मेरे चारों तरफ साइलेंस की एनर्जी फैल रही है और मेरे चारों तरफ एक साइलेंस का वायुमंडल फैल रहा है। यहाँ मैं बहुत सब चीज से डिटैच हल्का फील कर रही हूँ। अब मैं इस बॉडी से बाहर ऊपर जा रही हूँ, आकाश के ऊपर। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं इस संसार से ऊपर आकाश के बीच में उड़ रही हूँ। मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। मैं आकाश के बीच में, लाइट के बीच में, सारे वर्ल्ड की डिस्टरबेंस, साउंड और सब बातों से अलग फील कर रही हूँ। यहाँ ऊपर इस वर्ल्ड की कोई भी बात मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है। मैं वर्ल्ड से डिटैच हो गया हूँ। अब मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मेरे सामने सनसेट हो रहा है, तो सन से एक गोल्डन लाइट चारों तरफ फैल रहा है और बहुत शांति का वायुमंडल बन रहा है। यहाँ मैं और डीप साइलेंस की फील कर रही हूँ। मेरे चारों तरफ गोल्डन सनसेट का लाइट चारों तरफ फैल रहा है। अब मुझे चारों तरफ से वर्ल्ड की एनर्जी मेरे तरफ आ रहा है। मैं साइलेंस में सबसे एनर्जी ले रहा हूँ और फील कर रहा हूँ कि मुझे वर्ल्ड से सन, मून, स्टार और सारी नेचर से मुझे मेरे ऊपर एनर्जी आ रहा है और मेरे अंदर स्ट्रेंथ, मेरा पावर इंक्रीज हो रहा है और मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं। अब मेरे सामने थोड़ा ऊपर एक चमकता हुआ स्टार सामने देख रही हूं। मैं अब वो चमकता हुआ स्टार के नजदीक जा रही हूं। वो एक सुप्रीम पावर है। उस सुप्रीम पावर, अ पॉइंट ऑफ स्टार के जैसे ही मैं नजदीक जा रही हूं, मैं फील कर रहा हूं मेरे अंदर एक लव, हैप्पीनेस और ब्लिस की एनर्जी भी आ रही है। मैं और लाइट होता जा रहा हूं। मैं अब उस पॉइंट ऑफ स्टार, सुप्रीम पावर के सामने खड़ा हूं और उस पॉइंट ऑफ स्टार, सुप्रीम पावर से बहुत पावरफुल लाइट मेरे ऊपर आ रहा है और मेरे चारों तरफ फैल गया है। जैसे ही ये पावर मेरे ऊपर आ रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है मेरा सारा टेंशन, मेरे सारी प्रेशर और मेरी सारी बातें खत्म हो गया है और मैं बहुत लाइट, एक लाइट के रूप में चेंज हो गया है। मैं अब ह्यूमन बीइंग नहीं, एक लाइट के रूप में अपने आप को फील कर रहा हूँ और उस सुप्रीम पावर से मुझे बहुत बहुत एनर्जी आ रहा है और मेरा सब बातें यहाँ डिसॉल्व, उस एनर्जी में डिसॉल्व हो गया है। अब मुझे अनुभव हो रहा है उस सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी मुझसे बात कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं, यू आर माय लवली चिल्ड्रेन। और मैंने भी कहा, यू आर माय बिलोवेड फादर। तो हम इस मिलन में बहुत खुशी की अनुभव कर रहे हैं। हमारे बीच सुप्रीम एनर्जी के साथ मेरा एक कनेक्शन अभी जुड़ गया है। मैं उसका बच्चा, एक पॉइंट ऑफ स्टार, और वो मेरा पिता, अ पॉइंट ऑफ स्टार है। उनसे मुझे बहुत प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, आनंद की शक्ति और प्यूरिटी की शक्ति मिल रहा है। मैं इस एनर्जी, इस लाइट में अपने आप को खो रही हूँ। परमपिता, परमात्मा, अ सुप्रीम पावर से मुझे बहुत बहुत एनर्जी भर के अब मैं धीरे धीरे ऊपर से नीचे इस बॉडी में आ गया हूँ। अब मैं इस बॉडी में एक न्यू लाइफ, न्यू एनर्जी का अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गया है, पावर आ गया है। मेरे अंदर शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, खुशी की शक्ति, आनंद की शक्ति बढ़ गया है और इस शक्ति से अब मैं अपने लाइफ को, अपने फैमिली को और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी एनर्जी दे रहा हूँ और अब मुझे बहुत एनर्जी आया है, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत एनर्जी से कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एनर्जी। ओम शांति। सो थैंक यू वेरी मच। तो हम तो राजयोग का अभ्यास करते हैं तो शॉर्ट पीरियड में हम ये एनर्जी हम अपने आप में फील करते हैं और जहाँ भी हो हम तो चलते फिरते भी, ऑफिस में बैठते भी, जैसे भी टाइम होता है, 5 मिनट का टाइम मिलता है, कभी 10 मिनट का टाइम मिलता है, तो थोड़ा हम इसमें अभ्यास करते हैं ना, सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाते हैं और अपने आप को एनर्जी से फील करते हैं। तो ऐसे नहीं लगता है कि हम होल डे काम कर रहे हैं, हम हमेशा एनर्जी को फील करते हैं। तो आप भी ऐसे अभ्यास करके आप भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारा ये सेशन आज ही पूरा हो गया है।